أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصاب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. جناب عباس قمی ایک روایت تحریر کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے خبر دی ہے کہ جو شخص ان پر اور مجھ پر 3 دن سلام کرے تو خدا اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی زندگی میں سلام کرے تو فرمایا کہ ہاں، اور اسی طرح ہمارے وفات پانے کے بعد بھی ہے. گزشتہ مجالس میں یہ بیان کیا تھا کہ جب شہزادی کاشانہ نبوت میں تھیں تو شہزادی نے اپنے بابا کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جیسے کہ ایک حقیقی ماں کا برتاؤ ہوتا ہے، اور شہزادی کو اسی لیے امو ابیہا کہا گیا. کل ہم بیان کر رہے تھے کہ شہزادی کاشانہ امامت میں کس طرح سے زندگی گزارتی ہیں، اور شوہر کا کتنا خیال اور لحاظ کرتی ہیں، اور کس طرح مولا کائنات کے ساتھ تعاون کرتی ہیں. کل ہماری بات یہاں پہ آ کے رکی تھی کہ جب مولا کائنات نے شہزادی سے کھانا طلب کیا اور شہزادی نے ان کو بتایا کہ 2 دن سے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میں اور حسنین بھوکے ہیں، اور مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا، تو بیوی نے فرمایا کہ مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے کہ آپ کو ایسی تکلیف دوں جو آپ کے بس سے باہر ہو. یعنی شہزادی اس حد تک مولا کائنات کا احترام اور خیال کر رہی ہیں کہ بھوک برداشت کر لیتی ہیں مگر مولا کائنات کو زحمت دینا نہیں چاہتی. آج بات کو آگے بڑھائیں گے اور شہزادی کا زہد، قناعت، سخاوت اور علم بیان کریں گے. نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہماری زبان میں طاقت ہے، نہ ہم شہزادی کا زہد، تقوی، علم، ثقافت کو سمجھ سکتے ہیں. بس جو کچھ علماء کرام سے پہنچا ہے، جو روایات اور احادیث، انہی کو بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت. بس کوشش ہے کہ پروردگار اس کوشش کو قبول کرے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ ملتا ہے کہ شہزادی نے دنیاوی لذتوں، آسائش اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو کبھی توجہ نہ دی جن پر عام طور سے خواتین گرویدہ ہوتی ہیں. جب اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مال غنیمت کے دروازے کھل گئے تب بھی شہزادی نے توجہ نہیں دی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا اور بیوی کئی کئی دن بھوکے رہتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ رائے خدا میں نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے وقف کر دیتے تھے. ابو نعیم اپنی کتاب میں رسول اللہ کی دختر کا تعارف ان الفاظ میں کرا رہے ہیں کہ انہوں نے، یعنی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، اس دنیا کی برائی اور آفتوں کو دیکھا اور اپنے آپ کو دنیا و مافیہ سے جدا کر لیا تھا. ایک دن جناب سلمان نے نبی کی دختر کو اس عالم میں دیکھا کہ آپ کی چادر میں کئی پیوند لگے ہیں. جناب سلمان غمگین ہوئے کہ ایسا کیوں ہے، کیا آپ پیشوائے عرب کی بیٹی اور نبی کے چچا زاد کی زوجہ نہیں ہیں؟ مسلمان ایسا سوچنے میں حق بجانب تھے، کیونکہ انہوں نے ایران کے شہزادوں اور شہزادیوں کی زندگیاں، ان کی شان و شوکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے سلمان، خداوند عالم نے قیمتی لباس اور طلائی تختوں کو ہمارے لیے روز آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے. جب نبی شہزادی سے ملنے کے لیے گئیں تو ان سے عرض کی کہ بابا جان، سلمان کو میری چادر دیکھ کر تعجب ہوا ہے. خدا کی قسم، علی کے گھر آئے 5 سال ہو چکے ہیں، हमारे पास एक भेड़ की खाल है जिस पर दिन में ऊँट का चारा डालते हैं और रात को उसी पर सोते हैं। पैगंबर इस्लाम और मौलाए कायनात और शहज़ादी की ज़िंदगी बहुत सादा थी, और चूंकि उस ज़माने में आम तौर पर तमाम मुसलमानों के हालात ही अच्छे नहीं थे, मुसलमानों की अक्सरियत का ताल्लुक़ फ़ुकरा और महरूम तबक़ात से था। मदीने में अक्सरियत फ़ुकरा की थी, चंद लोगों के हालात किसी हद तक बेहतर थे। वो इस्लाम का बहरानी दौर था और मुसलमान उस वक्त जंग के लिए हम वक्त तैयार रहते थे, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जंग में सर्फ होता था। इसी बिना पर वो अपनी इक्तसादी हालत को बेहतर नहीं बना सकते थे, और पैगंबर इस्लाम और हज़रत अली और जनाब फ़ातिमा, जो कि ईसार फिदाकारी का बेहतरीन नमूना हैं, कैसे मुमकिन था कि अपने लिए बेहतरीन ज़िंदगी का सामान फराम करें और फ़ुकरा से मवासात ना करें। अगरचे के मौलाए कायनात और रसूल अल्लाह काम करते थे और जंगी गनाइम में भी उनका हिस्सा होता था और वो एक हद तक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन क्या ये मुमकिन था कि पैगंबर और उनके दामाद और बेटी शिकम शेर सोएं और फ़ुकराए मदीना की भूख से सदाएं बुलंद हों? इस्लाम की तरक्की और रसूल अल्लाह की सीरत तालीमात का जो दिलों पर असर था, उसकी एक वजह ये भी बताई गई है कि मुसलमान जो कुछ रसूल अल्लाह से सुनते थे उसका अमली मुजाहरा रसूल अल्लाह और उनके अहले बैत के किरदार और तर्ज अमल में देखते भी थे, और इस तरह नबी करीम की अमली दावत के ज़रिए लोग इस्लाम और उसके खातिर जान की बाजी पर आमादा हो गए। बारहा ये बयान होता है कि मौलाए कायनात की ज़िंदगी सादा थी। अब इसकी वजह क्या है? एक वजह बयान करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बयान कर दें कि ये वजाहत इसलिए दी जा रही है कि हमारे यहाँ किसी के जहन में ये ख़्याल ना आए कि उनकी ज़िंदगी सादा थी तो हम भी जो हैं वो पेवन लगा लिबास पहन लें, क्योंकि सुनने में इस तरह की बात आई और किसी ने ये भी कहा कि दीनदार अफराद के हवाले से कि उन्होंने अच्छा लिबास क्यों पहना है और वो अच्छा लिबास क्यों पहनते हैं। तो मोमिनात गिरामी, ये किसने कहा है कि दीनदार लोग अच्छा लिबास ना पहने और अच्छी ज़िंदगी ना गुजारें? अभी हमने जैसा कि बयान करा कि वो ज़माना मुसलमानों के फ़ुक्र का ज़माना था, और आगे मज़ीद रिवायत बयान कर देते हैं कि मौलाए कायनात के लिए जो ये कहा जाता है कि मौलाए कायनात की ज़िंदगी सादा थी और इतनी सख्त रोटी तनावुल फरमाते थे जिसे तोड़ना भी मुश्किल था, तो उसकी एक वजह ये बयान की गई है कि मौला ने फरमाया कि इमाम को चाहिए कि खाने पहनने में अपनी रियाया के नादार तरीन शख्स के बराबर रहे और किसी ऐसी शय में उनसे मुमताज़ ना हो जिस पर वो कादिर ना हो। इमाम चूँकि पेशवा थे और वो ये ख़्याल करते थे कि हिजाज़ में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जिसको कुछ खाने कमाने का मौका ना मिला हो और उसको पेट भर के खाना ना मिला हो। फिर आगे जाके देखते हैं छठे इमाम का ज़माना है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सलाम। अल्लामा मजलिसी ने एक रिवायत बयान की है, उन्होंने बयान किया कि इमाम मस्जिद में हैं और उम्दा लिबास ज़ेब तन किया हुआ था इमाम ने, तो सुफियान सूरी ने करीब आकर कहा कि ऐ फ़र्जंदे रसूल, आपके जद रसूल अल्लाह तो ऐसा लिबास इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। उस पर इमाम ने फरमाया कि हाँ, वो मुसलमानों का ज़माना है, अफलास था यानी गुर्बत का ज़माना था, इसलिए रसूल अल्लाह नहीं चाहते थे कि आम मुसलमानों से बेहतर पोशाक इस्तेमाल फरमाएं। अब वो ज़माना नहीं है। मज़ीद इसकी वजाहत के लिए ये भी सुन लीजिए कि आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा है कि अगर कोई शख्स ऐसा लिबास पहनना चाहे जिसका कपड़ा, रंग या सिलाई रिवाज के मुताबिक ना हो, तो अगर उसका पहनना उसकी शान के ख़िलाफ़ और तौहीन का बायस हो तो उसका पहनना हराम है। तो खुदा ने जो नेमतें हमें अता की हैं उन्हें इस्तेमाल करें, मगर इसराफ नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि सब कुछ अपने ऊपर ही नहीं लगा लिया जाए, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखा जाए। जो कुछ हम खुदा की राह में देते हैं वही हमारे लिए बाकी रह जाता है, और जो हमारे पास है उसका हिसाब देना बाकी रह गया है कि उसका हमें आखिरत में हिसाब देना है। अब हम ये देखें कि हम अपने ऊपर कितना लगाते हैं और राय खुदा में कितना देते हैं, और इस सिलसिले में मौलाए कायनात का खुतबा नंबर 203, उसके चंद जुमले बहुत उम्दा। मौला ने इरशाद फरमाया कि दुनिया से अपने दिलों को बाहर निकाल लो इससे पहले कि तुम्हारे बदन को यहाँ से निकाला जाए। कोई भी शख्स जब मरता है तो इधर वाले ही सवाल करते हैं, क्या छोड़ कर गया है? और उधर फरिश्ते ये सवाल करते हैं कि लेकर क्या आया है, अल्लाह तुम्हारा भला करे कुछ वहाँ भी भेज दो जो मालिक के पास तुम्हारे कर्ज़े के तौर पर रहेगा, और सब कुछ यहीं छोड़ कर मत जाओ कि तुम्हारे ज़िम्मे एक बोझ बन जाएगा। हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ज़िंदगी की मामूली ज़रूरियात पर इक्तफ़ा किया। उन्होंने अपने बाबा से सुना था, ऐ फ़ातिमा दुनिया की सख्तियों पर सब्र करो ताकि आखरत की नेमतों से बहरामंद हो सको। बीवी कभी किसी चीज़ को नज़र उठा के नहीं देखती थी जिस पे उनका हक ना हो। हमें ये बात जान लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए इस बात को कि अगर कोई शख्स दूसरों के पास मौजूद नेमतों पर हिर्स या हसद करे तो सबसे पहला नुकसान ख़ुद उसको पहुंचता है जो कि हिर्स या हसद कर रहा होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो जाता है। रिवायात में है कि बुखील के लिए कोई राहत नहीं है और हासिद के लिए कोई लज्जत नहीं है। और कुफ्र की तीन बुनियादें बताई गई हैं जिनमें एक है हिरस, दूसरा है तकब्बुर और तीसरा हसद है। हिरस क्या है? ऐसा होता है ना, इंसान किसी की चीज़ देखकर सोचता है कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, चाहे ज़रूरत हो ना हो, लेकिन चूँकि फ़लाँ के पास है मेरे पास भी यही होनी चाहिए, मैं पीछे ना रहूँ, मुझे भी यही चाहिए, ये हिरस है। अगर वो ये सोचता है कि मेरे पास नहीं है फ़लाँ के पास क्यों है, उसके पास से भी छिन जानी चाहिए, उसके पास भी ना रहे, तो ये हसद है। और अगर इंसान अपने आप को बेहतर और दूसरों को कमतर ख्याल करे, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे तमाम काम अच्छे हैं, मुझे जैसी सलाहियत हासिल है किसी को हासिल नहीं है, वगैरह वगैरह, तो ये तकब्बुर है। और मुहिब्बे अहले बैत की एक सिफ़त ये बताई गई है कि मुहिब्बे अहले बैत लोगों के हाथों में जो कुछ देखता है उसका लालच नहीं करता, बल्कि हर किसी से उम्मीद क़ता करके सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद रखता है, और मुहिब्बे अहले बैत दुनियावी ख्वाहिशात से अदावत रखता है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने नफ्स में गनी थी और अपने हाल पर मुतमईन थी, क्योंकि उन्होंने अपने बाबा से ये सुना था कि गिना का मतलब दौलत की कसरत नहीं है, बल्कि असल गिना नफ्स का मुतमईन रहना है। रसूल अल्लाह ने मौलाए कायनात से फ़रमाया था, जिसे शहज़ादी भी सुन रही थी, कि जब किसी को दुनिया और आखरत दोनों पेश की गई और उसने दुनिया के बजाय आखरत को इख्तियार किया तो उसके लिए जन्नत है, और जिसने आखरत को कमतर समझकर दुनिया को इख्तियार किया उसके लिए आतिश जहन्नुम है। अल्लामा हाशिम मारूफ हसनी कहते हैं कि जनाब फ़ातिमा की नुमाया तरीन खसूसिया सिफ़ात में ये भी है कि आप मुसीबत पर सब्र, आसाइश पर शुक्र और क़ज़ा इलाही पर राज़ी रहती थीं। एक तरफ तो शहज़ादी का जोहद है, कनात है, और दूसरी तरफ तही दस्त होने के बावजूद आपकी सखावत भी ऐसी सखावत थी कि अपने ऊपर तंगी रखती थी और दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करती थी। सैयदुश्शोहदा से रिवायत है कि उनकी वालदा ने फरमाया, मुझसे मेरे बाबा ने फरमाया, देखो बुखल से बची रहना, क्योंकि ये ऐसी बदनुमाई है जो एक बाइज़्ज़त फ़र्द में नहीं होनी चाहिए। देखो बुखल से बची रहना, क्योंकि ये जहन्नुम का एक दरख्त है और उसकी शाखें दुनिया में हैं, जो कोई इसकी शाख को पकड़ लेगा ये उसको सीधा जहन्नुम में पहुंचा देगी। मुहिब्बे अहले बैत की एक सिफ़त ये है कि वो हर वो दिल जिसमें नूरे विलायत अहले बैत होगा वो बुखल के मर्ज से निजात पा जाएगा, उससे सखावत ज़ाहिर होगी, जो शख्स उनका मानने वाला होगा वो कभी कंजूस नहीं होगा। शहज़ादी ने मौलाए कायनात को ये फरमाते सुना कि अगर कोई शख्स कशाइश हासिल होने पर अपना माल नेक कामों में खर्च करता है तो वो जो कुछ खर्च करता है खुदा उसके एवज उतना ही उसको देता है और आखरत में उसको कई गुना अता करेगा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत में बहुत ज़रूरी हो जाता है, इमाम की गैबत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि यतीमान आले मोहम्मद का ख्याल रखा जाए। हुज्जतुल इस्लाम अमजद से पूछा गया कि क्या हम इमाम ज़माना के पसंदीदा हैं या नहीं, तो उन्होंने फरमाया कि इमाम का महबूब वो होता है जो हक़ परस्त होता है, हक़ का मानने वाला होता है, ख्वाहिश परस्त नहीं होता। वो हर वक्त लोगों की मुश्किलात दूर करने की फ़िक्र में रहता है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मोमिन किसी बिरादर मोमिन की नुसरत पर कादिर हो और वो उसकी मदद करे तो अल्लाह उसकी आखरत में मदद करेगा, और जो नुसरत पर कादिर हो यानी नुसरत तो कर सकता है, मदद कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद नहीं करे तो अल्लाह उसे दुनिया और आखरत में अपनी नुसरत से महरूम कर देगा। इमाम ने यह भी फरमाया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बेशक खुदा के नज़दीक महबूब तरीन अमल मोमिनीन को खुश करना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि खुदा की नाफरमानी के साथ खुश नहीं किया जाए। इस तरह से मोमिनीन को खुश ना किया जाए जिसमें खुदा की नाफरमानी हो। और सबसे ज़्यादा अहम यह है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को खुश किया जाए और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की जाए। और जिन अफराद का ख्याल रखा जाए उनको भी नेकी का जवाब नेकी से देना चाहिए। सूरह रहमान में परवरदिगार आलम फरमा रहा है, हल जज़ाउल एहसान इल्ल एहसान। और सहीफ़ा सज्जादिया में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम एक दुआ में अल्लाह से यूं अर्ज़ कर रहे हैं चंद जुमले के, बारहा इस मज़लूम की निस्बत, उस मज़लूम की निस्बत जिस पर मेरे सामने जुल्म किया गया और मैंने उसकी मदद ना की हो, और मेरे साथ कोई नेकी की गई हो और मैंने उसका शुक्रिया अदा ना किया हो, और हर उस गुनाह से जिससे मुझे वास्ता पड़ा हो मैंने इससे किनारा कशी अख्तियार ना की हो, तो तुझसे उज़र ख्वाह हूँ, यानी अल्लाह से माजरत तलब कर रहे हैं। इमाम मासूम है और इन तमाम बातों से बहुत बुलंद हैं। ये हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए पैगाम है। इस दुआ में तालीम दी जा रही है कि जो शख्स तुमसे नेकी और एहसान करे तो जज्बा एहसान शनासी के पेश नज़र उसके हुस्न सलूक का ज़बान और अमल से शुक्रिया अदा करो। अगर अमल के ज़रिए हुस्न सलूक मुमकिन ना हो तो ज़बानी शुक्रिया अदा करो। नबी ने फरमाया जो तुमसे हुस्न सलूक करे यानी अच्छा सलूक करे उसका शुक्रिया अदा करो, और जो तुम्हारा शुक्रिया अदा करे उससे हुस्न सलूक यानी अच्छा सलूक करो। ये जो एहसान शनासी का जज्बा है अभी तकरीबन ख़त्म ही होता जा रहा है। और ये कहना कि कोई कुछ भी करे करता रहे हम अपना अमल अच्छा रखें, बात तो ये सही है, इंसान अपने तौर पे अच्छाई करता रहे चाहे जवाब में अच्छाई मिले या बुराई मिले, लेकिन ये कहना आसान है, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। एक बंदा नेकी किए जाए और जवाब में बुराई मिलती जाए, या बुराई तो नहीं मिल रही लेकिन जवाब में अच्छा सलूक भी नहीं किया जा रहा, तो वो नेकी करने वाला थक जाएगा। वो भी तो आखिर इंसान ही है ना। एक तो वैसे ही नेकी करने वाले हमारे यहाँ कम हैं, और जो थोड़े बहुत हैं बचे कुचे तो उन्हें भी बुरे सलूक से थकाया जा रहा है। अक्सर और बेशतर लोगों से ये जुमला सुनने को मिलता है कि नेकी का ज़माना नहीं, जिसके साथ नेकी करो वही बुरा करता है। ऐसा माशरा नहीं बनना चाहिए कि लोग नेकी करने से खौफज़दा और गमज़दा हो जाएं, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि लोग खुशी और रग़बत के साथ एक दूसरे के काम आएं। और याद रखें कि जिस बारे में हम ये कहते हैं और समझते हैं कि माशरे में फ़लाँ बुराई हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, फ़लाँ अच्छाई ख़त्म हो रही है वो अच्छाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमारी अपनी ज़िम्मेदारी यह है कि हम उस अच्छाई पर कायम हो जाएं। यानी क्या, मसलन फ़र्ज़ करें मैं ये कहूँ अगर कि नहीं माशरे में जो है वो सच्चाई नहीं है और झूठ बहुत बोला जा रहा है, माशरे में झूठ नहीं होना चाहिए सच्चाई होनी चाहिए, सबसे पहले मेरी ज़िम्मेदारी यह है कि मैं हर बात में सच बोलूँ, सच पर कायम हो जाऊँ। जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो माशरे में बाकी रहे, वो ख़त्म हो रही है उसे ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो हम दूसरों से ही तवक्का ना रखें कि वो अमल करें, पहले मरहले पे हम खुद अमल कर लें। इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि जज्बा एहसान शनासी ख़त्म हो रहा है तो सबसे पहले मैं खुद एहसान शनास बन जाऊं, एहसान करने वाले के एहसान की कदर करूं, पहचानूं उसके एहसान को और उसका अच्छी तरह से शुक्रिया अदा करूं। मेरी तरफ़ से ऐसा ना होने पाए कि कोई नेकी करने के बाद अफसरदा हो, गमज़दा हो, उसको अफसोस हो। जिस जिस चीज़ के बारे में हम ये चाहें कि वो माशरे में बाकी रहे, तो सबसे पहले ये है कि हम खुद उस पर सख्ती से कारबंद हो जाएं। और अगर हर शख्स अपनी अपनी जगह पर इसी तरह से सख्ती से कारबंद हो जाए, अमली तौर पर अमल यानी अमल में पाबंद हो जाए, पाबंदी शुरू कर दें अमल की, तो हमारे माशरे से बहुत सारी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी और बहुत सारी अच्छाइयां हमारे माशरे में बाकी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। आयतुल्लाह सैयद अली ये कहते हैं कि जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा इल्म के मैदान में एक अजीम आलमा थीं। रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद आप मस्जिद नबवी में गईं और जो तारीख़ी खुतबा आपने दिया तो अल्लामा मजलिसी ने उसके बारे में ये कहा कि तमाम अदबा फुसहा और उल्मा को चाहिए मिल बैठ कर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के इस खुतबे के एक एक लफ्ज़ की तफसीर करें, क्योंकि ये खुतबा इतना जामे और फसी व बलीग है जो अदबी लिहाज से नहजुल बलागा के फसी व बलीग तरीन खुतबों की तरह है। आखिर क्यों ना होता, फसी हो बलिए खुतबा क्यों नहीं होता, इसलिए कि हम सरे मौलाए कायनात का खुतबा है, शेर इल्म की दुख्तर बाबुल इल्म की जौजा का खुतबा है। रहलत रसूल के बाद मस्जिद नबवी में गईं और इतनी मुश्किलात सख्तियों के बावजूद मस्जिद में लोगों के सामने इस्लामी हिजाब में ऐसा तारीखी खुतबा दिया कि तारीख में महफूज हो गया। तकरीबन 1 घंटे का खूबसूरत मुंतखब लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक अदबी शाहकार और एक इस्लामी सरमाया है। आयतुल्लाह सैयद अली कहते हैं कि बेकार बातें तारीख़ में बाकी नहीं रहती, लेकिन जिस चीज़ को तारीख़ ने अपने सीने में महफूज किया है 1400 साल गुजरने के बाद भी, आज जो शख्स उसे देखता है वो उसकी अजमत का एहसास करता है। ये खुद हज़रत फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रिफ़त है। मोमिनात, ये जुमला हमने कह दिया, आपने भी सुन लिया, आयतुल्लाह सैयद अली ने कहा कि 1 घंटे का खुतबा। लेकिन शहज़ादी ने ये 1 घंटे का खुतबा किस आलम में दिया है कि जब शहज़ादी का पहलू शिकस्ता हो गया था, शहज़ादी मस्जिद में 1 घंटा खड़ी रही, मुसलमान बैठे रहे। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। आयतुल्लाह सैयद अली कहते हैं कि मेरी नज़र में ये चीज़ एक जवान लड़की के लिए नमूना है अमल है कि एक मुसलमान औरत को हमेशा इल्म और फिरासत की जस्तजू में रहना चाहिए और अपनी रूहानी इखलाकी हवाले से खुदसाज़ी की कोशिश करते रहना चाहिए। हर किस्म के मैदान जिहाद में उसे आगे आगे होना चाहिए। आज मसहफ़ फ़ातिमा के बारे में बात करेंगे जिसका ज़िक्र पहले किया था, क्योंकि शहज़ादी के इल्म से मुतल्लिक़ बात हो रही है तो मसहफ़ फ़ातिमा का भी जिक्र करेंगे। आइम्मा हुदा से बहुत सी ऐसी रिवायात मरवी हैं जिनमें बयान किया गया कि मसहफ़ फ़ातिमा आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कि हज़रत फ़ातिमा ने एक मसहफ़ बतौर यादगार छोड़ा। वो कुरान नहीं, लेकिन वो खुदा के उस कलाम पर मुश्तमिल है जो अल्लाह ने जनाब फ़ातिमा पे नाजिल किया था। चौथी मजलिस में हमने छठे इमाम से रिवायत बयान की थी जिसका खुलासा ये था कि रसूल की वफ़ात के बाद जनाब जिब्रील जनाब फ़ातिमा की खिदमत में आते, ताज़िया तो तसल्ली देते और उसके अलावा वो जो कुछ बयान करते जाते थे मौलाए कायनात तहरीर करते जाते, और ये वही मजमूआ सुखन है जो मसहफ़ फ़ातिमा के नाम से मौसूम हुआ है। थोड़े से फ़र्क के साथ एक रिवायत है मनाकिब में जिसे अबू बसीर ने बयान किया है, और उन्होंने ये कहा कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से इमाम से मसहफ़ फ़ातिमा के बारे में दरियाफ़ किया तो उन्होंने फरमाया कि ऐसी किताब थी, यानी मसहफ़ फ़ातिमा ऐसी किताब थी, मुक़दस किताब को मसहफ़ कहते हैं, जो उनके वालिद की रहलत के बाद उन पर नाजिल की गई। तो अबू बसीर कहते हैं मैंने अर्ज़ किया क्या उसमें कुरान से कोई चीज़ है, इमाम ने फरमाया नहीं। तो अबू बसीर कहते हैं मैंने अर्ज़ की कि उसके बारे में कुछ बयान फरमाएं, तो इमाम ने फरमाया कि उसकी जिल्द दोनों तरफ से सुर्ख रंग ज़बरजद की हैं, उसका तूलो अर्ज़ एक वर्क के बराबर है, उसका वर्क सफ़ेद है जो कलमा कुन से वजूद में आया है, उसमें हर उस शय का ज़िक्र है जो वक़ू पज़ीर हो चुकी या क़यामत तक वाक़े होगी, उसमें हर एक आसमान फ़रिश्तों की तादाद और दीगर मौजूदात का ज़िक्र है, और उनके अस्मा भी मस्कूर हैं जिन्हें खुदा ने भेजा है, ख्वा व मुरसिल हों या गैर मुरसिल, उन अकवाम का ज़िक्र भी है जिनमें उन्हें मबऊस किया गया था, उन लोगों का ज़िक्र भी है जिन्होंने उनकी तकज़ीब की थी, और उनका ज़िक्र भी है जिन्होंने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। इसी तरह आगाज़ खिलकत से लेकर इंतहाए तख्लीक तक तमाम मोमिनीन और काफरीन के नाम भी उसमें मौजूद हैं, शहरों के नाम, हर शहर की खसूसियात, ख्वा वो दुनिया के मशरक़ में हो या मगरब में हो, हर शहर में मोमिनीन की तादाद, इसी तरह काफिरों की तादाद और लोगों की खसूसियात का ज़िक्र है जिन्होंने पैगंबरों को झुटलाया है, गुज़िश्ता अक़वाम की सिफ़ात, उनसे मरबूत दास्तानें, वो दुश्मनान खुदा जिन्हें सल्तनत हुकूमत मिली, उनकी मुद्दत सल्तनत और उनकी तादाद का तस्किरा है। इसी तरह आइम्मा अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी, उनकी मुद्दत इमामत, उनकी रजअत की खसूसियात और उन तमाम लोगों के फ़ज़ाइल जिनकी तमाम अदवार में उनके पास आमदोरफ़्त रही, मसहफ़े ज़हरा में मौजूद है। अबू बसीर कहते हैं मैंने अर्ज़ की अदवार ज़माने की कितनी मकदार को कहते हैं, इमाम ने फरमाया 50,000 साल के 7 अदवार होते हैं। इस मसहफ़ में आगाज़ आफरीनिश से क़यामत तक खुदा ने जितने लोगों को पैदा किया है या पैदा करेगा और उनकी उम्रें कितनी हैं उनका ज़िक्र मौजूद है। इसी तरह बहिश्तियों की खसूसियात और उनकी तादाद, दोसखियों की खसूसियात और उनकी तादाद, और उन दोनों गिरोहों के नामों का तذکرہ भी है। इसी तरह इसमें कुरान का इल्म वैसे ही मौजूद है जैसे नाजिल हुआ है, और दूसरी आसमानी कुतुब तौरात, इंजील, जबूर का इल्म भी उसी तरह मौजूद है जैसे नाजिल हुई हैं। इमाम फरमाते हैं कि बेशक तमाम मखलूक, जिनों, इंस, परिंदे, दरिंदे और अम्बिया और मलाइका पर उनकी अतात वाजिब थी। अबू बसीर कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, आप पर कुर्बान जाऊँ, उनके बाद ये मुसहफ़ किसके पास है? इमाम ने फरमाया, हज़रत ज़हरा ने उसे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तहवील में दे दिया था। उनकी शहादत के बाद इमाम हसन और उनके बाद इमाम हुसैन तक पहुंचा। फिर ये मुसहफ़ हर उस हस्ती के पास रहा जो कि इस काबिल थी, यानी इमामों के पास रहा, यहाँ तक कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया गया। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने हैरानगी से कहा कि ये इल्म तो बहुत ज़्यादा है। इमाम ने फरमाया, जो कुछ मैंने बताया ये इन दो वर्क़ों के आगाज़ में था। मैंने तीसरे उसके बाद वाले औराक़ के मतालिब अभी बयान नहीं किए हैं, हत्ता कि उनमें से एक हर्फ भी बयान नहीं किया है। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इलम के हवाले से एक रिवायत मिलती है कि अम्मार कहते हैं, एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए तो शहज़ादी ने फरमाया, या अली, आइए मैं आपको गुज़िश्ता आइंदा के हालात के बारे में बताऊं। हज़रत अली नबी की खिदमत में तशरीफ़ लाए, नबी ने फरमाया, गोया फ़ातिमा ने आपको फ़लाँ फ़लाँ बात बताई है और आप इसी वजह से मेरे पास आए हैं। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, क्या फ़ातिमा का नूर भी हमारे नूर से है? पैगम्बर ने फरमाया, क्या आपको इल्म नहीं है? हज़रत अली ने यह सुनकर सजदाए शुक्र बजा लाई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर सजदाए शुक्र अदा किया। मौलाए कायनात जानते थे कि जनाबे फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर भी उन्हीं के नूर से है, लेकिन ये जो सवाल जवाब का जो अंदाज़ है ये समझाने के लिए और पैगाम पहुँचाने के लिए है। उसके बाद जब नबी से मौलाए कायनात की ये गुफ्तगू हो गई और मौलाए कायनात वहाँ से उठकर जनाबे फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लाए, तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, या अली, गोया आप मेरे बाबा के पास गए थे और उन्होंने आपको फ़लाँ फ़लाँ बात बताई है। तो हज़रत अली ने फरमाया, हाँ ऐ दुख्तरे पैगंबर। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, या अबल हसन, खुदा ने मेरे नूर को पैदा किया और वो अल्लाह की तस्बीह करता था। उस वक्त अल्लाह ने उस नूर को बहिश्त के दरख्त में वदियत कर दिया। जब मेरे वालिद बहिश्त में दाखिल हुए तो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि इस दरख्त का मेवा तनावुल फरमाएं। मेरे वालिद ने उस दरख्त का मेवा तनावुल फरमाया और यूं मेरा नूर उन तक मुंतकिल हुआ। शहज़ादी के इल्म के हवाले से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो रिवायत अभी बयान की और जो अब बयान कर रहे हैं ये दोनों रिवायतें आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी ने अपनी किताब फ़ातिमतुज़ज़हरा इस्लाम की मिसाली खातून इस किताब में उन्होंने तहरीर की हैं। 11वें इमाम से रिवायत है कि एक औरत हज़रत फ़ातिमा की खिदमत में शरफ़याब हुई और अर्ज़ की कि मेरी माँ ज़यीफ़ और कमज़ोर है, नमाज के बारे में उसे मसाइल दरपेश हैं, उसने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है कि आपसे सवाल दरियाफ़्त करूँ। फिर उसने मसले पेश किए तो हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसका जवाब दिया। उसने एक मसला पेश किया, बीवी ने जवाब दिया। उसने दूसरा मसला पेश किया, पूछा, शहज़ादी ने उसका भी जवाब दिया। इसी तरह वो पूछती चली गई यहाँ तक कि उसने 10 मसले पूछे और शहज़ादी जवाब देती चली गई। ज़्यादा सवाल करने की वजह से वो औरत शर्मसार हो गई, कहने लगी, दुख्तरे रसूल, आप थक गई होंगी। शहज़ादी ने फरमाया, शर्मिंदा ना हो, जो भी सवाल चाहो पूछो, मैं तुम्हारे सवालों से थक नहीं रही हूँ बल्कि कमाली मोहब्बत से जवाब दे रही हूँ। फिर बीवी ने एक मिसाल बयान की, फरमाती हैं, अगर किसी को भारी बोझ, वज़न छत तक उठाकर ले जाने के लिए कहा जाए और 1 लाख दीनार उजरत दी जाए तो क्या वो वज़न उठाने से थकेगा? उस औरत ने जवाब दिया, नहीं। नहीं थकेगा, क्योंकि उसे इस काम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजदूरी मिल रही है। हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, खुदा हर एक मसले के जवाब में मुझे इतना सवाब इनायत फरमाता है जो इससे भी ज़्यादा है कि ज़मीन और आसमान को मरवारी से पुर कर दिया जाए, तो क्या इसके बावजूद मैं मसले का जवाब देने से थकूंगी? आगे शहज़ादी फरमाती हैं, मैंने अपने वालिद से सुना कि मेरे शियों के उलमा क़यामत में मशहूर होंगे और खुदा उनके इल्म की मकदार और लोगों की हिदायत के सिलसिले में उनकी कोशिशों के मुताबिक उन्हें खिलअत और सवाब अता फरमाएगा। खिलअत कीमती उम्दा लिबास को कहते हैं। उन्हें खिलअत और सवाब अता फरमाएगा, यहाँ तक कि उनमें से एक आलिम को नूर की 10 लाख खिलअतें अता फरमाएगा। उसके बाद हक का मनादी निदा देगा है वो लोगों जिन्होंने आले मोहम्मद के यतीमों की किफालत की है, जिस ज़माने में उनके इमाम का सिलसिला उनसे मुनक़ता हो चुका था, ये लोग तुम्हारे शागिर्द थे और वो यतीम है जो तुम्हारी किफालत के ज़रिए अपनी दीनदारी पर बाकी रहे, तुमने उनकी हिदायत की, जितनी मकदार उन्होंने तुम्हारे उलूम से इस्तफादा किया उसी मकदार में उनको खिलअत दो। और रिवायत का ख़ुलासा यह है कि उलमा को, उनके पैरोकारों को, उनके शागिर्दों को, सबको खिलअतें अता की जाएंगी। और शहज़ादी फ़ातिमा ने इस औरत से फरमाया, उस खिलत का एक धागा उस चीज़ से 1000 दर्जा बेहतर होगा जिस पर सूरज चमकता है। अब ये जिसे खिलत कहा जा रहा है, खुदा जानता है कैसी आली कदर और आली शान चीज़ होगी। और इस रिवायत से ये बात भी समझ आती है कि किफ़ालत सिर्फ पैसे से ही नहीं की जाती है, बल्कि इल्म हिदायत के ज़रिए भी की जाती है। और 11वें इमाम से एक और रिवायत है कि दो औरतें जिनमें से एक मोमिन और दूसरी दुश्मन थी, उनके दरमियान एक दीनी मसले में इख्तलाफ हुआ और वो दोनों इस इख्तलाफ के हल के लिए हज़रत फ़ातिमा की खिदमत में हाजिर हुईं। क्योंकि मोमिन औरत हक़ बजानिब थी, इसलिए जनाबे फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी गुफ्तगू दलाइल और बुरहान से उसकी तायीद की, और इस तरह वो मोमिन औरत दुश्मन औरत पर कामयाब हो गई और खुश हुई, मोमिना औरत खुश हुई। बीबी ने उससे फरमाया, मोमिना औरत से, कि अल्लाह के फरिश्ते तुझसे ज़्यादा खुश हुए हैं और शैतान और उसके पैरोकारों का गमो अंधो उससे ज़्यादा हुआ है जितना इस दुश्मन औरत को हुआ है। और इमाम ने फरमाया कि यही वजह है कि खुदा ने फरिश्तों से फरमाया कि इस खिदमत के इवज़ जो फ़ातिमा ने इस मोमिना औरत के लिए अंजाम दी, बहिश्त और पहले से मुकर्रर बहिश्ती नेमतों को 1000 गुना ज़्यादा कर दिया जाए। यही वजह है कि यही जो रविश और सुन्नत जो है वो उस आलिम के बारे में भी जारी की जाती है जो अपने इल्म से किसी मोमिन को इतनी तकवियत पहुंचाए कि मोमिन किसी दुश्मन पर फतायाब हो जाए। दीन इस्लाम में इल्म हासिल करने को बहुत अहमियत दी गई है। अहले बैत के मानने वालों को उनकी तालीमात से आगाह होना और दूसरों को आगाह करना ज़रूरी है। जो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर और हर फ़र्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो तालीमात अहले बैत से ख़ुद भी इंसान रोशनी हासिल करे और दूसरों तक भी रोशनी पहुँचाई जाए। बाबे इल्म शहरे इल्म के मानने वालों से ज़्यादा किसके लिए ज़रूरी होगा कि इल्म हासिल करें? मौलाए कायनात ने फरमाया, खुदा जिस बंदे की भलाई चाहता है उसे दीन का इल्म अता फरमाता है और दुनिया से उसे बेरगबत बना देता है और उसकी खामियों से उसे आगाह कर देता है। आज का ज़माना, इसको तरक्की याफ्ता ज़माना कहा जाता है। गुज़िश्ता ज़माने की निस्बत आज वसाइल, जदीद टेक्नोलॉजी ज़्यादा मौजूद है, मगर गुज़िश्ता ज़माने में ये टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, वसाइल नहीं थे, मगर घरानों में मोहब्बत और खुलूस बहुत था। आज की निस्बत पहले के घराने मिलजुल कर रहते थे, आज इख्तलाफात ज़्यादा हैं। तलाक़ की शरह पहले कम थी, अब ज़्यादा है। और उस ज़माने में औलाद फरमाबरदार बाअदब ज़्यादा थी। आज किसी वालदैन से पूछ कर देखें कि आपकी औलाद आपके साथ वैसे ही है जैसे आप अपने वालदैन के साथ थे। पहले माएँ कम पढ़ी लिखी थीं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी हुई। पहले कितने ही बच्चों ने ज़मीनों में बैठ कर इल्म हासिल किया मगर नाम रोशन किए, काबिल तरीन अफराद सामने आए। तो ये जो आज कहा जाता है ज़माना तरक्की याफ्ता है, तो तरक्की किसने की है? साइंस और टेक्नोलॉजी ने की है, इंसानियत और अखलाकियात ने तरक्की नहीं की है। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि फ़र्ज़ करें जिस माशरे में मानवियत और अखलाक हो लेकिन इल्म ना हो, तो यही ला इल्मी उस माशरे को तबाही के दहाने पर ले जाएगी। और अगर किसी کسی معاشرے میں علم ہو یعنی اچھی یونیورسٹیز ہوں مگر اخلاق معنویت نہ ہو تو اس علم و دانش سے بشریت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ علم معنویت اور اخلاق کے بغیر ایٹم بم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بے گناہوں پر گرتا ہے، لہٰذا علم کو اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ترقی چاہے صنعتی ہو، سائنسی ہو، مادی ہو، لیکن اخلاق کے ساتھ ہونی چاہیے، دین کا علم حاصل کیا جائے۔ اور ایک چیز اور کہ فقہی احکام، شرعی احکام، واجبات کے ساتھ ساتھ اخلاقی واجبات پر بھی عمل کیا جائے، پہلے تو ان کو سیکھا جائے، حاصل کیا جائے، پھر ان پر بھی عمل کیا جائے۔ شرعی احکام یعنی نماز، روزہ، اور اخلاقی واجبات یعنی امانت داری، وعدہ وفا کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، اس کا ترک کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اسی طرح وعدہ وفا کرنا واجب ہے اور وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے۔ زیادہ تر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہمارے یہاں لوگ دین کی طرف جاتے ہیں، نماز، روزہ، حجاب وغیرہ کر لیتے ہیں، مگر اخلاقی واجبات پہ ہم توجہ نہیں دیتے، اور جو شخص بھی آبا قبا میں یا حجاب میں نظر آئے، یعنی دیندار نظر آئے، لوگ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ مثلا اگر ہم کسی مسئلے میں اس سے رجوع کریں گے تو وہ ہمدردی کرے گا، ہماری بات سنے گا، ہمارے کام آئے گا، کچھ نہیں تو کم از کم ہمیں وقت تو دے ہی دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں دین سے بھی اور دینداروں سے بھی۔ حدیث ہے، ہمارے لیے زینت بنو، رسوائی کا باعث نہ بنو۔ ابھی ہم نے شہزادی کا طریقہ دیکھا کہ شہزادی کتنے محبت کے ساتھ اس عورت کو سوالوں کے جواب دے رہی ہیں، اور کتنی خوبصورت روایت شہزادی نے بیان کی جو ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے۔ تو بس مومنات گرامی، علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کا ہونا ضروری ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ علم جو ہے وہ اگر ہم شرعی احکام کا حاصل کر رہے ہیں تو اخلاقی احکام کا علم بھی ہمیں حاصل ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ کیونکہ آیت اللہ ابراہیم امینی یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعاً جو دیندار شخص ہے اس کے پاس شرعی احکام اور اخلاقی احکام دونوں کا علم بھی ہو اور عمل بھی کرے تو ہوگا وہ واقعاً سعادت مند اور دیندار انسان۔ بس مومنات، بات کو آج یہاں پہ روکیں گے، اور جس طرح تسلسل کے ساتھ مصائب بیان کیے جا رہے ہیں ان کو ہم بیان کریں گے کہ روایت یہ ہے کہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہفتے میں 2 بار پیر اور جمعرات کے دن شہدائے احد کی قبروں پہ جاتی تھیں، اور حضرت حمزہ کی قبر کے کنارے بیٹھ کے رویا کرتی تھیں۔ شہزادی کبھی حسین علیہ السلام کی گردن کا بوسہ لیتی ہیں اور ان کے مصائب میں آنسو بہاتی ہیں، اور کبھی حسن کو سینے سے لگاتی ہیں اور ان کے بوسے لیتی ہیں، کبھی زینب و ام کلثوم پر پڑھنے والے مصائب کو یاد کرتی ہیں اور ان کے لیے گریہ کرتی ہیں۔ ایک دن شہزادی نے مولا کائنات سے یہ فرمایا کہ میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے بابا کے حضور پہنچ جاؤں گی، آپ کو وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ جو چاہیں وصیت کریں، اور شہزادی کے سرہانے بیٹھ گئے، اور شہزادی کے افسردہ چہرے اور حلقے پڑی آنکھوں پر نگاہ کی تو رو دیے۔ حضرت فاطمہ نے پلٹ کر اپنے مہربان شوہر کے غمناک چہرے کو دیکھا اور عرض کی کہ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی خیانت نہیں کی۔ امام پر حضرت زہرہ کی گفتگو سے رقت طاری ہو گئی، آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ حضرت زہرہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ یا علی، ہماری زندگی کا ساتھ ختم ہو رہا ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میں نے آپ کے گھر میں پوری کوشش کی کہ آپ کی اطاعت گزار رہا ہوں، کسی معاملے میں بھی آپ کی مخالفت نہ کروں۔ اور اسی طرح کی دیگر باتیں شہزادی نے بیان فرمائی تو مولا نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ خدا کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں۔ دختر رسول، آپ ان باتوں سے بہت بلند ہیں، آپ کی جدائی کے صدمے نے میرے لیے رسول اللہ کی موت کے صدمے کو تازہ کر دیا ہے، آپ کی جدائی بہت بڑا ثانیہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کے بعد آسود کی نصیب نہیں ہو سکے گی اور دل کو سکون و قرار نصیب نہ ہو سکے گا۔ شہزادی اور امیر المومنین اپنے آنسوؤں پر ضبط نہ کر سکے، بہت دیر تک دونوں روتے رہے، اور اپنی زندگی جو کہ خلوص و محبت، صداقت اور ایثار کی دنیا تھی، اس کو یاد کر کے اشک بہاتے رہے، ایک دوسرے کی فداکاری اور مشکلات کو یاد کر کے نالا کرتے رہے۔ جب آنسو تھمے تو شہزادی نے وصیت فرمائی، جن میں یہ وصیت بھی تھی کہ جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، میرے حقوق پامال کیے، मेरे जनाजे में ना आए, मेरी नमाज़े जनाजा ना पढ़ें, उनके पैरोकार भी शामिल ना हो, मुझे रात के वक्त दफन करें, मेरी कब्र का निशान मिटा दीजिएगा, और उन तमाम कामों से फारिग होने के बाद मेरे चेहरे के सामने बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़िएगा, मैं आपको खुदा के सुपुर्द करती हूँ। हज़रत अली और जनाबे जहरा के दरमियान जो बेपनाह मोहब्बत थी उसको बयान नहीं किया जा सकता। इमाम के दिल पे जनाबे जहरा की तन्हाई, जनाबे जहरा की जुदाई किस कदर शाक गुजरी है। इमाम की तन्हाई को अल्लाह जानता या इमाम का दिल जानता है। रिवायत है कि शहजादी ने एक वसीयतनामा तहरीर फरमाया था और अपने सरहाने रख दिया था, जिसमें बिस्मिल्लाह के बाद तहरीर था, ये फातिमा की वसीयत है, मैं खुदा की वहदानियत की गवाही देती हूँ, मोहम्मद खुदा के रसूल हैं, बहिश्त और दोजख हक है, कयामत बेशक वाकई होगी, खुदा मुर्दों को ज़िंदा करेगा, या अली खुदा ने मुझे आपकी शरीक हयात करार दिया ताकि हम दुनिया और आखिरत में साथ रहें, आप मेरे लिए दूसरों से ज़्यादा हकदार हैं कि आप मुझे रात में गुस्ल व कफन दें और मेरी नमाज जनाजा पढ़ें, रात के वक्त मुझे दफन करें और किसी को खबर नहीं कीजिएगा, मैं आपसे विदा होती हूँ, आपको खुदा के सुपुर्द करती हूँ, और मेरी औलाद को रोज़े कयामत तक मेरा सलाम पहुँचे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलैकी व अला ज़ुर्रियतिकी या फातिमत ज़हरा या बिन्त रसूल अय्यतुहल बतूल या कुर्रत आइन रसूल या बिज़अत नबी या हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़िही या सैयदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना व इस्तशफ़ाना व तवस्सलना बिकी इलल्लाहि व क़द्दमना की बैन यदै हाजातिना फ़िद दुनिया वल आखिरा या वजीहतन इंदल्लाहि इश्फ़ई लना इंदल्लाह।